जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Nittai Gaura Haribol, 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 Nittai Gaura. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet nashta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtikim.
Hare Krishna. We are all very fortunate to have His Grace Kamal Lochan Prabhu with us. His Grace Kamal Lochan Prabhu was raised in traditional Madhva Brahmin family in South India. Since his childhood, he had a natural taste for inquiry into mysteries of God's creation. He received an engineering degree from Marine Engineering Research Institute, Calcutta in 1994. During his college days, he came across Srila Prabhupada's books and found that all his unanswered questions were completely satisfied. He later joined the Merchant Navy as an engineering officer and worked for 3 years. Later on, he was initiated by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Presently, he is president of ISKCON Mira Road, Mumbai. He is also visiting professor in MS University for Management and Social Work faculties. He also conducts seminars on personality development in educational and corporate sectors. His only concern is children and youth should understand the moral and spiritual values as enunciated in Bhagavad Gita. His name is included in Sannyas list. He travels and preaches in Rajasthan and Gujarat. He is well known for deep study in Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Acharya's commentaries and other scriptures. He is a regular teacher at VIHE for Bhakti Shastri courses over a decade. Actively preaching in India and abroad, he has opened extension centers which has flourished as full-fledged temple at Vapi. So we are all very extremely grateful to Prabhuji for gracing us by giving his valuable association. Let us welcome Prabhuji to Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Temple by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Ajanati Priyatamam Yada Uparatam Angana Sustira Asanam Asadya Yatha Purvam Upacharat Ajanati Priyatamam Ajanati Priyatamam Yadoparatam Mangana Yadoparatam Mangana Sustirasanam Asadhyā Sustiramasanam Asadhyā Yathapurvam Upacharat Yathapurvam Upacharat Ajanati Priyatamam Ajanati Priyatamam Yadoparatamangana Sustirasanamasadhyā Yathapurvam Upacharat Ajanati Priyatamam Yatoparatamangana Sustirasanamasadhyā Tapurvam Upacharat Ajanati Priyatamam Yatoparatamangana Sustiramasanamasadhyā Vapurvam Upacharat Ajanati Priyatamam Yadoparatamangana Sustiramasanamasadhyā Yatapurvam Upacharat Ajanati Priyatamam Yadoparatama Angana Sustiramasanamasadhyā Yatapurvam Upacharat Shabdhart is prakar hai Ajanati Na janne se प्रियतमम प्राण प्रिय पति को यदा जब उपरतम मर गया अंगना स्त्री सुस्थिरा आविचल आसनम आसन में आसाध्य निकट जाकर यथा जिस तरह पूर्वम पहले उपाचरत सेवा करती रही अनुवाद और तात्पर्य इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि उसने इस शरीर से चूक कर दिया है। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि रानी सेवा करते समय अपने पति से बोलती तक ना थी, वह केवल समुचित कार्य करती रहती। उस प्रकार उसने तब तक सेवा करनी बंद नहीं की जब तक अपने पति के शरीर से प्राण निकल नहीं गए। ओम ज्ञान विरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणलिताश विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। ऐसे वो लास्ट स्पीक इन हिंदी, दर्जेंट स्पीक इन हिंदी। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है कि पुरंजन उपाख्यान। उपाख्यान का अर्थ है कुछ ऐसे एक काल्पनिक घटना को वर्णन करना जिसके द्वारा एक सत्य को, एक तत्व को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि सत्य को सीधा अगर किसी को कहा जाए तो वो समझ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और सुनने में भी थोड़ा सा हिचकिचाएगा व्यक्ति। इसलिए ये शास्त्रों का एक प्रकार का प्रस्तुतीकरण है जिसमें एक काल्पनिक घटना को वर्णन करते हुए एक सत्य को वर्णन किया जाए। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद का 2वां अध्याय आखिरी अध्याय दूसरे श्लोक में कहा गया है, दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानामि लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन अंजसा। तीन तरीके से, थ्री वेज, श्रुतेन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे वेद में कहा गया यथा। दूसरा अर्थेना, अर्थ को वर्णन करते हुए एक व्याख्यान के रूप में, एक उपाख्यान के रूप में, एक व्याख्यान के रूप में एक स्टोरी को वर्णन करना। अंजसा मतलब एक गहरा सत्य को बहुत आसानी से, श्रुतेन अर्थेन अंजसा, आसानी से वर्णन कर सकते हैं या आसानी से समझाने के लिए प्रयास करना, उसको अंजसा कहा गया है। जैसे कोई किसी को एक बात कहना है, उसका कहने के तीन तरीके होते हैं। जैसे कोई एक मालिक नौकर को कहता है, एक मित्र मित्र को कहता है, एक प्रिय प्रियतमा को कहती है। जैसे मालिक नौकर को कैसे कहता है, मान लो कोई बात कहना है, झाड़ू मारो, सीधा बोलते हैं। ये वेद का भाषा है, वेद का भाषा बड़ा कठोर रहता है। पुराणों की जो भाषा होती है वो थोड़ा सा मित्र दूसरे मित्र को जैसे समझाते उस प्रकार का रहता है, झाड़ू मार देना यार, ऐसे उसको बोलोगे, मित्र को जाके बोलोगे ऐ झाड़ू मारो, अच्छा हाँ तुमसे मरवाता हूँ।
तो जिसके पास भावुकता ज्यादा रहती है तो उनको आप नौकरी के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। वेद की भाषा समझने के लिए उस व्यक्ति को उतना सत्वगुण में होना जरूरी है। सात्विक व्यक्ति वेद की भाषा को सहन कर सकता है, ईर्ष्या, ये भाषा जो है बहुत ही कठोर भाषा है, इसको समझने के लिए व्यक्ति को और ग्रहण करने के लिए सात्विकता की आवश्यकता होती है। तो जिसके पास उतनी सात्विकता नहीं है उन लोगों के लिए खास करके स्त्री वैश्य द्विजबंधु नाम श्री शूद्र द्विजबंधु नाम इन लोगों के लिए व्यासदेव ने पुराणों की रचना की है, उसकी भाषा थोड़ा सा और मधुर रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं पुराणों की भाषा भी नहीं समझते, मित्रों की भाषा, वो बहुत ज्यादा ही भावुक होते हैं, इतना अत्यंत आसक्ति रहती है उनको, मित्र की भाषा बोलने से भी समझ में नहीं आता है, ग्रहण नहीं करते। उनके लिए जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध होता है, एक प्रिय और प्रियतमा इन दोनों के बीच में व्यवहार होता है, भाषा होती है, वो भाषा में बोलना पड़ता है। जैसे एक पत्नी जो है पति को बोलना चाहती है कि आप झाड़ू मारो, बोल नहीं सकती, और मित्र के रूप में भी जरा झाड़ू मार दीजिए ऐसा भी बोल नहीं सकती, क्या बोलेगी? झाड़ू के रहा बात ही नहीं करेगी, झाड़ू के रहा बात ही नहीं करेगी, क्या बोलेगी? मैं तो आपका पत्नी हूं ना, इतना सेवा करती हूं, मां मुझे खाली नहीं रखते, सब दुनिया भर की बातें कही, पति समझ जाएगा क्या है, मुझे झाड़ू मारने के लिए बोल रही है, इतना काम है, मुझे कुकिंग करना पड़ता है, इतना सारा बर्तन है, देखिए घर साफ तो हुआ ही नहीं, मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत उल्टा सीधा सब बोलेगी, सब कुछ दुनिया भर की बातें बोलेगी। पति जो है बुद्धिमान तो समझ जाएगा, बुद्धि नहीं है तो डांट खाएगा लास्ट में, इतना भी समझ नहीं सकते क्या। काव्यात्मक, काव्य की भाषा ऐसी रहती है, वेद पुराण और काव्य, काव्य की भाषाएं है। काव्य की भाषा जो है जिसको वर्णन करना है, जिसको बोलना है, उसके अलावा सब कुछ बोला जाता है। वैसे नारद जी बड़े एक्सपर्ट है, इसलिए जिसको जिसको बोलना है वो उसके बोले बिना सब कुछ बोल रहे हैं, व्हाट ही हैज टू टेल। पुरंजन को, प्राचीन परिषद को जो भी बोलना था उन्होंने नहीं बोला, उसके अलावा कुछ भी दुनिया भर की बातें, कहां कहां से कैरेक्टर को लाते, अगस्त्य को लाया, मलय ध्वज को लाया, मदिरेक्षणा को लाया, वैदर्भी को लाया, और क्या क्या किस किस को नहीं लाया, और द्रविड़ देश के राजाओं को लाया, और सात पुत्रों को लाया, क्या किस किस को नहीं लाए बताइए, हर प्रकार के लोगों को लाया, और ये बड़ा सुंदर स्टोरी बनाया। जिसके विषय में बोलना है वो नहीं बोला, बाकी सब बताया, ताकि समझ सकते तो समझो, नहीं समझा तो ना समझो, ऐसा है। इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए, देखिए काव्य समझना भी आसान काम नहीं है, उसके लिए बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होना चाहिए। इसलिए काव्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है शास्त्रों में, काव्य। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, रसों रस शास्त्र को वर्णन करना है तो आपको काव्य काव्यात्मक ढंग से वर्णन कर सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, वैसे रस तत्वों को वर्णन करने के लिए है, लेकिन रस को प्रस्तुत करने के लिए आपको और कोई भाषा नहीं है, काव्य भाषा ही, काव्यात्मक भाषा ही एकमात्र प्रयोग किया जा सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक देखेंगे, पहला श्लोक में आपको कृष्ण का वर्णन प्राप्त ही नहीं होता है। अगर वो पहला श्लोक लेके देखेंगे, अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाड़ ही कलित श्यामालितो राधा प्रेयान विदुर जयति, ये श्लोक निकाल के संस्कृत के विद्वान को दे दीजिए, बोलिए ये मत बोलिए कहाँ से श्लोक, बस इसको दे दीजिएगा, वो कहेंगे कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने, किसका? चंद्रमा का। ये पूरा श्लोक चंद्रमा का वर्णन होता है, कृष्ण का वर्णन नहीं है। विदु जो शब्द है वो चंद्रमा का प्रसिद्ध नाम है, चंद्र का प्रसिद्ध नाम विदु है, कृष्ण को विदु करके बहुत ही कम तरीके से जानते हैं, इतना आपको संस्कृत के ग्रामर में जाके बड़े गहराई से देखेंगे तब पता लगे कृष्ण का नाम को विदु करके भी संबोधित किया गया है, लेकिन विदु करके जो नाम है प्रसिद्ध, प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम किसका है? चंद्र का है, चंद्र का प्रचलित नाम है विदु। तो चंद्र का वर्णन कर रहे हैं, सबको पता लग रहा है चंद्र का वर्णन हो रहा है, लेकिन वर्णन किसका हो रहा है? कृष्ण का। ये भाषा है, ये शैली है, इसलिए इसको उपाख्यान कहा है, पुरंजन उपाख्यान। तो उपाख्यान में अभी प्रसंग आपने पिछले दो अध्यायों से चर्चा करते आ रहे हैं, अनेकों अनेकों बातों को कहा जा रहा है, लेकिन प्रस्तुतः अभी जो करंट जो श्लोक, दो श्लोक मुझे दिया गया है उसमें वर्णन आ रहा है किन दोनों के बीच में, वैधर भी जो पिछले जन्म में पुरंजन था और अवैधर भी विदर्भ के राजा की पुत्री बनी, और उनका पति जो है मलयध्वजा, इन दोनों के बीच में संबंध का वर्णन हो रहा है। वैधर्भी, वैधर्भी क्यों है उनका नाम, क्योंकि विदर्भ की पुत्री है। वास्तविकता में देखा जाए विदर्भ दर्भा, दर्भ मतलब कुसा घास, दर्भ। तो ये दर्भ ये जरूरी होता है, कोई भी यज्ञ करना हो तो दर्भ की जरूरत होता है। दर्भ, दर्भ के बिना आप कोई यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते, यानी जिसने दर्भ को ही अपना जीवन बना के जिया है, कौन है वही दर्भी। यानी दूसरे शब्दों में जिसने अपने कर्मकांड को ही अपना जीवन मान के जिया है। पिछले जन्म में ये पुरंजन कोई बहुत सारे कर्मकांड कार्य किया था। दो प्रकार की उनके पास बुद्धि थी, धार्मिक बुद्धि थी, अधार्मिक बुद्धि थी। जब धार्मिक बुद्धि के अनुसार आचरण करता रहा तो अच्छा था, लेकिन वो अधर्म के बुद्धि को पालन करने का बहुत दुखों का अनुभव किया, वापस धर्म के पास गया, तब तक उनकी शरीर जो नष्ट हो चुका था। तो ये पुरंजन ने जन्म लिया वापस, किस रूप में लिया, एक स्त्री के रूप में लिया। क्यों? क्योंकि वो आसक्ति था एक स्त्री के प्रति। तो जो व्यक्ति कर्मकांड में रहता है उसको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं मिलता। तो ये भक्ति को प्रचार करने वाले कौन होते, गुरु होते, आचार्य होते हैं। तो आचार्य का वर्णन हुआ है, गुरु का वर्णन हुआ है मलयध्वज। ये मलयध्वज ऐसे गुरु है जो मलया मतलब मलय पर्वत से चंदन उत्पन्न होता है, जिनके जिनके स्वरूप से भक्ति का चंदन का सुगंध उत्पन्न होता है, इसको मलयध्वज कहा जाए, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है मलया पर्वत मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, उसके पर ध्वजा यानी जहां जहां जाते हैं वो श्रेष्ठ बनते हैं और उनके सिद्धांत को स्थापना करके ध्वजा को स्थापना करते हैं, मलयध्वज। ये दो अर्थ हुआ मलयध्वज का। तो ये मलयध्वज जो है अहेतु की मतलब जहां जाए उधर राज्यों को कॉन्कर करते थे, यानी दूसरे जगह जाके हर जगह अपना सिद्धांत को, भक्ति का सिद्धांत को स्थापना करके उधर के जितने भी गलत सिद्धांत है, विपरीत सिद्धांत है, उन सबको हराते थे। ये उसके पीछे सिद्धांतिक बात है। मलयध्वज कोई राजा नहीं है, वास्तविकता में बताया जाए वो गुरु है। गुरु का कार्य क्या है, अलग अलग जगह जाके उनके सिद्धांतों को खंडन करके, गलत सिद्धांतों को खंडन करके जो सही सिद्धांत है भक्ति सिद्धांत का, ध्वजा को स्थापना करना। जैसे कोई राजा है, कोई राज्य के ऊपर जाके राजा को हरा देता है, उस राज्य को प्राप्त कर लेता है, तो उसके कार्यकर्ता अपनी जो ध्वजा है उधर लगा के आता है। उसी प्रकार मलयध्वज भक्ति की ध्वजा को हर जगह स्थापना करके आ रहे थे। संयोग वर्ष ऐसा हुआ कि उनको आना पड़ा विदर्भ राजा, उधर आके उन्होंने विदर्भ राजा को परास्त किया, यानी विदर्भ राजा के यानी कर्मकांड के जो सिद्धांत थे उसको उन्होंने परास्त किया। कर्मकांड का सिद्धांत यानी कर्मकांड तो ठीक है वैष्णव लोग इस्तेमाल करते, अलग बात है, कर्मकांड को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने को कर्म मीमांसा कहा गया है। कर्मकांड ही हमारा अभिधेय है और स्वर्ग प्रयोजन है और इंद्रिय भोग शरीर के साथ ही हमारा संबंध है। ये इसको प्रस्थापन करने वाला ये सिद्धांत है, उसको कर्म मीमांसा कहा गया है। हमारे अनेकों अनेकों प्रकार के गलत सिद्धांतों में सबसे बड़ा अगर दुश्मन हमारा कोई है तो कर्म मीमांसा के सिद्धांत सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे वेदांतियों के लिए दुश्मन कौन है, कर्म मीमांसा है। बाकी सब सिद्धांत को तो पहले से परास्त कर दिया गया है, वो करने की इतना जरूरत भी नहीं है। कर्म मीमांसा को परास्त करना हर वेदांती का, हर भक्ति के प्रचारक का सबसे परम प्रथम उद्देश्य होता है। जैसे ब्रह्मसूत्रों में सबसे पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा। व्यासदेव ने सूत्र को क्यों रचना किया, कर्म मीमांसा के जो सिद्धांत को प्रस्थापन करने वाले हैं उनको खंडन करने के लिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र को रचना किया। वैसे तो जिनका कर्म मीमांसा सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं रहता उन लोगों का वर्णन करते हैं, अथा 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 मतलब अभी तुमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इसलिए आप ब्रह्म का जिज्ञासा करो, बात वो नहीं है। बात यह है अथाह, अथाह मतलब अभी तुमने जान लिया है। क्या जान लिया है? इंद्रिय भोग जो है वो क्या है, वो क्षणिक है और दुखदायी है, इसके वजह से ब्रह्म जिज्ञासा करो। क्योंकि अथाह तो धर्म जिज्ञासा, ये कर्म मीमांस का जैविनी का धर्म सिद्धांत का शुरू होता है, अथाह तो धर्म जिज्ञासा से। वो लोग कहते हैं मनुष्य जन्म लेने के धर्म को पालन करना चाहिए, ब्रह्म की जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अंततः व्यक्ति को प्रैक्टिकल होना चाहिए। वेदों में दो प्रकार का ज्ञान है, भगवत संबंधी ज्ञान है और हमको क्या करना चाहिए वेद निर्देशन करता है। उन दोनों में क्या महत्वपूर्ण है, डिस्क्रिप्शन महत्वपूर्ण है या आपको प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण है? कोई कह सकता है कि डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है, जो बोला गया प्रैक्टिकल होना चाहिए, है कि नहीं? इस प्रकार का विचार रखने वाला जो है उसका मन में अभी भी कर्म मीमांसा का कीड़ा भरा हुआ है। क्या भगवत कथा सुनना, डिस्क्रिप्शन है, कुछ प्रैक्टिकल बताइए प्रभु जी। भगवत कथा को श्रवण करने से बढ़कर कोई प्रैक्टिकल चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसमें प्रैक्टिकल ढूंढने जाएंगे, उसके तो कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं होता है। तो ये कर्म मीमांस का ज्ञान है, वो सोचते हैं कि प्रैक्टिकल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डिस्क्रिप्शंस। वैसे तो लंबा चौड़ा चर्चा किया जा सकता है। वो कहते हैं देखो आपके जो सिद्धांत है ना, कर्म मीमांस सिद्धांत लोग कहते हैं आपका जो सिद्धांत के अनुसार, यानी आपके उपनिषदों में कहा गया है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीविषे क्षतगुम समा, हजार सौ साल जियो कर्म करते हुए जी हो, तो कर्म का वर्णन जो है केवल हमारे शास्त्र में नहीं आपके उपनिषद में भी कहा गया, कर्म करो करके कहा गया है। लेकिन बात वो है कर्म कैसे करना चाहिए, ये वही कर्माणि कुर्वन ये वा, किस प्रकार, ईशावाशविदम सर्वम, डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये दोनों के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा, ये नया संघर्ष नहीं है। जैसे आप देखो कुछ कहीं कहा जाओगे, कोई कहता है कि कुछ प्रैक्टिकल काम करो, दिन भर क्या जप करते रहते हो, भागवत पढ़ते रहते हो, प्रैक्टिकल कर दिखाना चाहिए। कोई कहता है ये सबसे क्या फायदा, प्रैक्टिकल से कुछ फायदा नहीं है, बस मन को भगवान में लगाओ, जप करो, भागवत पढ़ो। लेकिन ये जो विरोधाभास है इन दोनों में, सेवा करे या साधना करे, ये जो विरोधाभास नया चीज नहीं है, वो उसका जो युद्ध है अनेकों वेद का स्थापना हुआ तब से चल रहा है, सृष्टि का प्रारंभ से शुरू हो रहा है। ब्रह्मा जी से मानस पुत्र, पहले पुत्र चार कुमार, ब्रह्मा जी ने कहा चार कुमारों को, बेटा आप चारों जो है जनसंख्या को वृद्धि करो, चार कुमारों ने कहा नहीं हमको भजन करना है। तो ये नया बात नहीं है, हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, जो भी है, मलय ध्वज उन्होंने क्या किया, भक्ति का सिद्धांत को स्थापना किया विदर्भ में आके। तो विदर्भ के राजा ने क्या किया, मैं तो हार गया हूं, तो मेरी पुत्री को आप अपना लीजिए, विवाह में स्वीकार किया मलय ध्वज। तो क्या है ये, आध्यात्मिक विवाह दीक्षा, गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, दीक्षा जो कार्यक्रम होता है, अभी इधर वैदर्भी का और मलय ध्वज दोनों के बीच में जो विवाह हुआ, तो विवाह है क्या, दीक्षा का समारोह, दीक्षा का समारोह विवाह है। किसके बीच विवाह है, शिष्य और गुरु के बीच विवाह है। कौन सा विवाह है, आध्यात्मिक विवाह, स्पिरिचुअल मैरिज। इसलिए कहा गया है कि एक शिष्य को अपने गुरु को पति के रूप में स्वीकार करके जीना चाहिए, जैसे एक पत्नी पति की सेवा करती है, उसी प्रकार एक शिष्य को पति गुरु का सेवा करना चाहिए। जैसे एक पत्नी एक स्त्री का विवाह होने के बाद, कन्या का विवाह हो गया, होने के बाद वो अपने घर को जरा सा भी ध्यान नहीं रखती, अपना घर को अपना नहीं मानती है। ये वैदिक सिस्टम है, वो कभी ये नहीं बोलते अपने घर जाऊंगी, अपना माता पिता को ही बोलती है अभी मेरे घर में आइए, विवाह होने के बाद बोले मेरे घर में आइए, ऐसा बोलती है वैदिक सभ्यता है। अभी तो सब कल्चर खत्म हो गया, अलग बात है, इतना हद तक कि वो हमारी भाषा में, दक्षिण भारत की भाषा तेलुगु भाषा में ये बात कहा जाता है, एक स्त्री को आड़ आदि करते हैं कि इधर की नहीं है उधर की है, यानी दूसरे घर की है, ये पहले से कहा जाता है, हमारी घर की नहीं है। जन्म लिया तो बच्ची का जन्म हुआ उसी समय से वो बोलते हैं कि ये आड़ मनुषी, का अर्थ क्या है, इधर की नहीं है उधर की है। वो बचपन से ट्रेनिंग मिला जाती है, देखिए संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है, भाषा में भी इतना गहरा तत्व रखा हुआ है। इधर की नहीं है दूसरे की है। वैसे भक्ति में भी क्या है कि कोई बच्चा जन्म लेता है घर में, ये समझना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, ये वास्तविकता में गुरु का है। ये बात इधर बताया जा रहा है, मलय ध्वज और वैदर्भी, वैदर्भी का विवाह हुआ, आध्यात्मिक विवाह। जैसे एक स्त्री विवाह होने के बाद अपने घर वालों को पराये मान लेती है, उसी प्रकार एक शिष्य जो है गुरु से दीक्षा लेने के बाद अपना परिवार को अपना परिवार नहीं मानता है, गुरु का परिवार को एक परिवार मानता है, गुरु को ही परिवार का जो मुख्याकिर मानता है, बस ये त्याग करता है। तो वैधर्मी, वैधर्मी में खूब सहयोग दिया। सबसे पहला सहयोग क्या होता है पत्नी का, वो है पुत्रों को संतान को उत्पन्न करना। और पति का सबसे परम कर्तव्य होता है कि पत्नी को संतान प्रदान करना। वो संतान में सबसे पहला गुरु ने वैदर्भी के गर्भ से उन्होंने एक संतान को उत्पन्न किया, यानी एक गुरु ने एक शिष्य के चेतना से एक संतान को उत्पन्न किया। कौन सा संतान था, वो रुचि, रुचि प्रजायते, वो पुत्री जो है उधर एक क्षणा वो रुचि है। किसके प्रति रुचि है, भक्ति के प्रति रुचि है, नाम के प्रति रुचि है, साधना भक्ति के प्रति रुचि है, भागवत के प्रति रुचि है, ये गुरु प्रदान करते हैं। जैसे गुरु के बिना शिष्य को रुचि प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार इधर मलय के बिना वैदर्भी को रुचि प्राप्त नहीं हुआ। जैसे वैदर्भी का विवाह हुआ तुरंत रुचि उत्पन्न हुआ उनकी पुत्री, और साथ साथ में उनके सात और पुत्र हुए, ये हमने आप चर्चा किए होंगे पहले। वो कोई और नहीं है, श्रवण कीर्तन इत्यादि है। नवधा भक्ति में सात का ही उल्लेखन किया गया है, क्योंकि बाकी जो आखिरी दो है साख्यम मात्व निवेदनम, वो तुरंत अभ्यास नहीं किया जा सकता, उसके लिए कम से कम एक भाव के स्तर में तो होना चाहिए ये दोनों को अभ्यास करने के लिए, पूर्ण तरीके से अभ्यास करने के लिए। तो ये पहले के जो सात है, श्रवणम कीर्तनम मिश्र श्रवणम पदार्थनम वंदनम दास्यम, ये सात पुत्र हुए। वो अनेकों अनेकों जगह जाके अलग अलग प्रकार के रसास्वादन को प्रकाशित किए, अनेक अनेक पुत्रों को उत्पन्न किए, ये सब का वर्णन आता है। होने के बाद मलय ध्वज ने देखा, क्या देखा, अभी मैंने इस साम्राज्य को, भक्ति का राम साम्राज्य को स्थापना कर दिया है, अभी समय आया मुझे भजन करने का। अपने पुत्रों को अलग अलग प्रकार के राज्यों को दे दिया, लेके वो एकांत स्थान में आए, वेंकटाचला एक क्षेत्र में आए जहां भजन करने बैठे। जब उनकी पत्नी वैदर्भी यानी शिष्य ने देखा कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा करके शिष्य भी चल पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। बड़े बड़े मठों का स्थापना किया गया था, बड़े बड़े राज्यों को स्थापना किया, भक्ति का साम्राज्य को स्थापना किया, अनेकों अनेकों शिष्य थे, उनको भी छोड़ दिया। उसको बोलता सर्वदाना। तो हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए, वो आचार्य भी कहते हैं भौतिक परिवार को त्याग करके गुरु का आश्रय ग्रहण करके भक्ति का साम्राज्य को स्थापना करने के बाद भी उसको भी त्याग करना चाहिए, त्याग करके एकांत में भजन करना चाहिए। क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं होती हैं या कोई सत्ता होता है वो भी चेतना को प्रदूषित कर सकता है, इसको सर्वदाना कहा गया है। हमारे संप्रदाय में एक आचार्य हुए वादिराज तीर्थ, तो उन्होंने यानी मध्य संप्रदाय में हुए, उन्होंने तीन बार सर्वदाना किया। एक जगह जाते हैं वादी राजा, वादन करने में एक्सपर्ट है, राजा को राजा के सामने अनेकों पंडितों के साथ उन्हें वाद विवाद करके सबको उन्होंने क्या किया, हरा दिया और पूरा राज्य में वैष्णव धर्म को स्थापना किया। और राजा ने उनको बहुत बड़ा संपत्ति दिया, बहुत बड़ा जमीन दिया, मठ मंदिर स्थापना किया। क्या किया, तुरंत स्थापना करके कुछ महीने में सब व्यवस्था करके बस हाथ साफ करके किसी को बैठा के दूसरी जगह चलो, ये जो पहना है उसी से निकल गया और कुछ नहीं, कोई चीज। तो वैराग्य केवल घर छोड़ने से वैराग्य नहीं है, मठ को छोड़ के बड़ा साम्राज्य को छोड़ना भी वैराग्य माना गया है। क्योंकि ये मठ मंदिर से भी अहंकार उत्पन्न होता है। तो मलय ध्वज ने उससे भी मुक्त होकर एकांत स्थान में जाके भजन करने बैठ गए, जस्ट वेंट देयर। एक शिष्य कुछ ही एकदम बिल्कुल निकटतम शिष्य होते हैं, उनको ही साथ में लेके जाते गुरु उस एकांत भजन स्थान में। तो गुरु भजन कर रहे हैं, मलय ध्वज का भजन का प्रणाली चल रहा है और भजन में कभी भी विघ्न नहीं आए, उस प्रकार की सेवा कर रही है। कौन? उनकी उनकी पत्नी यानी शिष्य। शिष्य को जब गुरु भजन करते हैं उस समय किसका किस प्रकार सेवा करना चाहिए, वो सब्जेक्ट है आज का श्लोक का। क्या क्या वर्णन हुआ है इस श्लोक में, अगर देखेंगे एक शब्द आया है अजानती प्रियतमम। अजानती, अजानती शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या करते हैं? उनको मालूम भी नहीं था, गुरु भजन करते 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 जब करते करते प्राण को त्याग कर चुके हैं। रोज चुपचाप आती थी, सेवा करती थी, चली जाती थी रोज। यानी शिष्य को कैसे होना चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई बातचीत नहीं सेवा करने के समय, बस आना। सेवा से मतलब है और कोई चीज से मतलब नहीं है। इस प्रकार की जो अनन्य भक्ति जो है, एकचित्त होके सेवा करना, जैसे एकेह गुरुनंदना, इस प्रकार की भाव से ये पत्नी जो है सेवा कर रही थी। यानी पत्नी मतलब इधर कौन? शिष्य है। शिष्य गुरु का सेवा कैसे होना चाहिए? अजान, उनको मालूम भी नहीं था कि गुरु जीवित है कि नहीं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान गुरु के स्वरूप में नहीं था, शरीर में नहीं था, सेवा के प्रति था। ध्यान सेवा के प्रति है। देखिए, एक जो है गुरु से आसक्त होना, दूसरा क्या है? गुरु के सेवा के प्रति आसक्त होना। प्रियतमम कहा गया है, प्रियतम मतलब गुरु को बड़े प्रेम के साथ गुरु से अत्यंत आसक्त होना, और साथ साथ में सेवा के प्रति आसक्त होना, ये दोनों बातें हैं। लेकिन इन दोनों में उनकी आसक्ति जो है किसमें थी? सेवा में थी। इसकी वजह से मालूम भी नहीं पड़ा कि गुरु अपने शरीर त्याग कर दिए हैं। ये इस प्रकार की सेवा था। बाद में कहा गया प्रियतमम यदा उपरतम, यथा उपरतम अंगना, स्त्री जो है सुस्ती रहा, सुस्ती होके बैठे थे, उनको मालूम ही नहीं था। आके जैसे जैसे उपचार करना था सारे उपचार करके वो चल पड़ी। पता नहीं कितना दिन चला, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, मालूम नहीं, लेकिन उसका वर्णन नहीं आता। लेकिन ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो सोचने लगी आज गुरु जी जो है बहुत ही ध्यान में मग्न है, इसकी वजह से उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। प्राण त्याग कर चुके थे, वो मालूम नहीं था, ध्यान में मग्न है, खाली मेरा काम है सेवा करना, सेवा कर जाना। खास करके बड़ों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, केवल सेवा जितना हद तक है उतना सेवा करके आना चाहिए। इस प्रकार का एकदम गाढ़ संबंध प्रेम गुरु और शिष्य के बीच में, इसको वर्णन किया जा रहा है इधर। जब गुरु अपना प्राण त्याग करते हैं तो उस समय शिष्य का क्या स्थिति होना चाहिए, अगले श्लोक में से वर्णन आता है। जैसे अगले श्लोक को भी मुझे कुछ कहा गया उसके विषय में कहने के लिए, कहा गया है कि जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी, यानी चरण सेवा की बात आई, सारी अर्चना उपर्चना सब साफ सफाई करने के बाद चरण सेवा करने की समय आया। चरण सेवा की समय करने का तुरंत क्या हुआ, उनको क्या पता लगा? वो एकदम बिल्कुल ठंडा पड़ गया। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसकी व्याख्या को वर्णन करते हैं, यानी आयुर्वेद का वर्णन करते हैं। एक शरीर में प्राण नहीं है उसको कैसे पता कर सकते हैं? तो आजकल के जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं ब्रेन डेड। ब्रेन डेड से वो कोई हम निर्धारण नहीं कर सकते इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को डेथ सर्टिफिकेट भी दिया गया लेकिन बाद में जीवित हुए, न्यूज में आता है, और बहुत सारे न्यूज में आता है, कुछ न्यूज में नहीं आता है, क्योंकि डॉक्टर का नाम खराब होता है, हॉस्पिटल का नाम खराब होता है। ब्रेन डेड है, डेड करके क्वेश्चन, उनको डेथ क्या मालूम ही नहीं है तो सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? लाइफ क्या वही नहीं मालूम तो डेथ क्या वो कैसे मालूम हो सकता है? तो सर्टिफिकेट क्या, लाइफ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट दोनों का कुछ वैल्यू ही नहीं है। बहुत ऐसा हुआ है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे शमशान में लेके जाए अभी जलाने वाले तो अब खड़ा हो गया बैठी, ऐसा भी परिस्थिति है। क्योंकि उनको क्या मालूम है, एलोपैथी वालों को खाली उनको यही मालूम है प्रोटीन विटामिन आयरन वही मालूम है। कोई किसी का मृत्यु होता है हम ये नहीं बोलते इसका प्रोटीन अंत हो गया, कोई आयरन अंत हो गया, नहीं, प्राणांत हो गया बोलते कि मैम। तो प्राण के बारे में उनको मालूम ही नहीं है तो क्या प्राणांत कैसे मालूम पड़ेगा? प्राणांत हो गया वो उसका लक्षण दो जगह से मालूम पड़ता है, हार्ट बीट से भी नहीं है। हार्ट बीट बंद होने के बावजूद भी व्यक्ति जीवित हो सकता है, कैसे? उनके आंखों से पता लगता है, आंख। पहले जमाने में हम जब बचपन में डॉक्टर के पास जाया करते थे वो आंख को ऐसे देखते थे, क्यों देखते थे मालूम नहीं, क्योंकि एलोपैथी में उस प्रकार का कोई चीज है ही नहीं, आयुर्वेद में ही है। लेकिन फिर भी आदत था, वैद्य मतलब पहले आंख देखेगा, जीवा देखेगा, ऐसा था। लेकिन आजकल और डॉक्टर लोग देखते नहीं, क्योंकि मालूम पड़ा उसको हमको, हमारी विद्या में तो ये चीज़ है ही नहीं आंख देखना और जीवा देखना, ये नहीं था। एक दूसरा है जो चरण जो है उधर देखा जाता है, दो जगह से पता लग जाता है कि प्राण है कि नहीं, एक उष्ण और दूसरा है प्राण, ये दो चीजों से पता लगता है। जब तक प्राण है ये शरीर का टेम्परेचर बना के रखता है, प्राण निकल गया तो टेम्परेचर नहीं रहेगा। जैसे बाहर का टेम्परेचर से शरीर का टेम्परेचर ज्यादा है, उष्ण है, अग्नि है, क्यों है, क्योंकि प्राण है इसकी वजह से अग्नि है। इन दोनों के रूप में देखा जाता है, उन्होंने देखा तो तुरंत क्या हो गए, एकदम बिल्कुल व्याकुल हो गए, मृगी यूत भ्रष्टा मृगी यथा, यूत भ्रष्टा युदी मृगी यथा, मृग जैसे मृग उनके और एक मृग मर जाता है जिससे प्रेम हुआ है, तो किस प्रकार उनका हालत होता है उस प्रकार उनकी हालत हुई। यानी दूसरे शब्दों में आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति कब उत्पन्न होती है, जब गुरु के प्रति आसक्ति हो। आगे के श्लोकों में इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप में वर्णन हुआ है। ये गुरु के प्रति आसक्त होना, यस्या देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यायत कतियायत अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, इस श्लोक का, इस मंत्र का, वेताशर उपनिषद का ये मंत्र का उल्लेखन इधर किया गया है। यथा देवे तथा गुरु, इसका अर्थ क्या है, जिस प्रकार आपका प्रेम भगवान में चाहते हैं उस प्रकार का प्रेम पहले गुरु में करो। जब गुरु के प्रति प्रेम होगा उस प्रेम को देख के भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, बाद में भगवान प्रकट होंगे, ब्राह्मण के रूप में आएंगे और उनको उपदेश देंगे। क्यों, उन्होंने देखा कि ये जो शिष्य है उसको गुरु के प्रति इतना प्रेम है, किस प्रकार एक पत्नी को पति से अत्यंत प्रेम होता है, होना चाहिए। तो आजकल की बात नहीं कर रहा हूं, ये वैदिक सभ्यता में पति मतलब उनके लिए प्राण है, पति को ही परमेश्वर के रूप में मान के जीना, ये पत्नी को शिक्षा दी जाती है, उनके लिए और कोई भगवान नहीं है, वो आप पति ही भगवान है। तो इसी उदाहरण के द्वारा बताया जा रहा है, जिस प्रकार एक पत्नी को पति को ही भगवान के रूप में स्वीकार करके जीती है, उसी प्रकार एक शिष्य को अपनी गुरु को ही भगवान मान के जीना, ये सिखाया गया है संबंध के द्वारा। ऐसा जो उनका शरीर त्याग हुआ, गुरु का शरीर जब त्याग होता है, त्याग करते हैं, उस समय किस प्रकार अनुभव करना चाहिए, हमारे आचार्यों ने सिखाया। रामानुज आचार्य अपने प्राण को त्याग कर रहे थे, उस समय पूरा दृश्य देखेंगे तो सारे लोगों की आंखों में आंसू। प्रभुपाद जी अपना प्राण त्याग कर रहे, उस समय आप देखिए सारे जितने भी उनके शिष्य है, बहुत सारे शिष्य एकत्रित, वो वीडियो देखना चाहिए, उससे पता लगता है कि उनको अपने गुरु के प्रति कितना आसक्ति है, हाउ मच लव दे हैड। वो वीडियो देखिए, बहुत अद्भुत वीडियो, द फाइनल लेसन। वो फाइनल लेसन में ऐसा लग रहा है कि कोई कह सकता है कि प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि प्राण को कैसे त्याग करना चाहिए, वो सिखा रहे हैं, ठीक है वो तो सिखा रहे हैं, लेकिन सीखने वाली बहुत सारी चीजें उसके अंदर, हमको सीखने वाली बहुत सारी चीजें क्या है, गुरु के प्रति किस प्रकार प्रेम भाव होना चाहिए उसकी शिक्षा से। एक पता नहीं ये प्रचलित बात नहीं है, उस प्रसंग में एक प्रभुपाद के शिष्य हुए जिनका नाम है सुहोत्र महाराज, उन्होंने एक लेख लिखा है, किसी एक संदर्भ में लेख लिखा है, वो संदर्भ मैं बाद में कहूंगा। उसमें उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने देखा अपने सारे शिष्यों को, अपने अभी प्राण तो त्याग कर रहे हैं, आखिरी समय की बात है, तो सारे शिष्य जो है एकदम बिल्कुल दग्ध हो चुके हैं, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था प्रभुपाद जी के बिना कैसे जिएंगे, दे वर नॉट नोइंग, प्रभुपाद जी को ये बात मालूम है, और सारे शिष्यों में आंखों में आंसू, कभी कभी कुछ शिष्यों को होश ही नहीं था, क्या चल रहा है मालूम नहीं है, हमारा जीवन हमारा क्या होगा प्रभुपाद जी के बिना, क्योंकि प्रभुपाद जी के बिना कैसे जिए उनको मालूम ही नहीं था, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कोई जीवन होगा प्रभुपाद जी के बिना, क्योंकि इतने मग्न थे प्रभुपाद जी के सेवा में, उनको कभी ऐसा समय आएगा कि प्रभुपाद जी नहीं रहेंगे उसका कभी विचार ही भी नहीं किए थे। इस स्थिति को देख के प्रभुपाद जी मुस्कुराए, सारे शिष्य रो रहे मुस्कुरा रहे, प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए, आई हैव डन माई जॉब, मैंने अपना काम कर लिया। इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी को मालूम था ये सब लोग मेरे से इतना आसक्त है, इस आसक्ति को देख के तुरंत कभी ना कभी इन सारे शिष्यों को कृष्ण मिल जाएंगे। प्रभुपाद जी को विश्वास था, आई डन माई जॉब। ये प्रचार कार्य ये है, गुरु का कार्य ये है। क्या करते हैं वो गुरु, अपने शिष्यों को इतना अपने से आसक्त बना लेंगे तो वही आसक्ति जो है वो उनकी भगवत प्राप्ति का कारण बनेगा। बात हो रही ये गुरु के प्रति इस प्रकार का आसक्त होना, कंप्लीटली अटैच्ड टू स्पिरिचुअल मास्टर। रामानुजाचार्य के संप्रदाय में ये बात बहुत देखने को मिलता है। उनके शिष्यों में इतना सारा चीजें, ऐसे ऐसे एक एक शिष्य हुए तो उनके विषय में सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस प्रकार का आसक्ति, भगवान के सामने रामानुजाचार्य दर्शन कर रहे श्री रंगनाथ जी का, उनका एक शिष्य है वड़गनंबी, तो वो रामानुजाचार्य के दर्शन कर रहे हैं। रामानुजाचार्य कहे भगवान के दर्शन करो, तो मैंने कहा आप अपना भगवान का दर्शन करो, मैं अपना भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। आप अपना भगवान का दर्शन करो, मैं अपना भगवान का दर्शन करो। उनके शिष्य सुरेश, तो उन्हें कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कि बस मैं आपका आखिरी लीला को देखना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर लास्ट पास टाइम, क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता। एक शिष्य ने एक जगह से दूसरी जगह रामानुजाचार्य जा रहे थे, उसका सामान पैक किया, दूसरी जगह गए रामानुजाचार्य के, उनके शिष्य जो है कहीं गए हुए, तो सोचा भाई सेवा करने का समय आया, चलो पैकेट खोलता हूँ, अपना सामान खोलता हूँ। सामान खोल के देखा जिसके अंदर उनकी शालिग्राम शिला उनका विग्रह रखा हुआ है, उसमें उनका जूता भी रखा हुआ है रामानुजाचार्य का। देखिए भगवान है और उनके ऊपर रामानुजाचार्य का जूता भी है। तो तुरंत बड़े क्रोधित होकर उनका बड़ा, क्या हो गया तुमको, इस प्रकार क्यों कर रहे हो, क्या किया तुमने। तुमने कहा मैंने क्या किया। तुमने कहा भगवान के ऊपर जूता रखे हो मेरा। तुमने कहा कि ये आपका भगवान है, ये जूता मेरा भगवान है। क्या आपका भगवान मेरे भगवान से श्रेष्ठ है क्या। रामानुजाचार्य तेरे कहां से आया। ऐसे एक ने अनेकों अनेकों स्टोरी है, देयर सो मेनी स्टोरीज, बड़ा उत्सव चल रहा है। क्षीर कैंकर्य शालिने, दूध को उबालने का सेवा दिया गया उनको अलगनंबी को, तो दूध उबाल रहे। रामानुजाचार्य ने कहा अरे मेरा शिष्य कहा इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, बुला उसको, जाके बुलाए। तुमने कहा वो मेरे गुरु जी को कहना, उनको बोलो अपना सेवा करें, मैं अपना सेवा करता हूं। अब देखो कितना हिम्मत ऐसा बोलना। तो मेरा सेवा ये है क्योंकि मैं आऊंगा, दूध उबल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो फिर क्या उनको क्या बुलाऊंगा मैं अपने भगवान को। तो ये आ सकती है अटैचमेंट टू स्पिरिचुअल मास्टर, इसका कोई देयर इज नो रीजनिंग फॉर इट। ऐसा कौन चीज का होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है आसक्ति में, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है। इस प्रकार कंप्लीट अटैचमेंट टू स्पिरिचुअल मास्टर, ये भगवत दर्शन का कारक बनता है। ये बात जो है इसे इन श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। एकदम बिल्कुल व्याकुल होना, कैसे जिए कृष्ण अपने गुरु के बिना, ये भाव को हृदय में धारण करते हुए जिएंगे तो भगवान जो है उनका दर्शन प्राप्त होगा। ये इस प्रसंग में इस संत का वर्णन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8:55 हो गया, ठीक है। कोई प्रश्न इत्यादि अगर है तो, अनुमति है तो ले सकते हैं। इन क्वेश्चंस,
हाँ प्रभु जी, आपने कहा कर्म मीमांसा सबसे बड़ा शत्रु है वेदांत वगैरह, तो व्हाट अबाउट मायावाद, मतलब दोनों में से कर्म मीमांसा ज्यादा बड़ा शत्रु है।
देखिए मायावाद जो है अपने घर का दुश्मन है। क्योंकि वो भी वेदांत सूत्र को पालन करते हैं कि नहीं, तो वो ज्यादा है, क्योंकि घर का दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। जैमिनी के कर्म मीमांसा सूत्र है वो वेदांतियों के दुश्मन है, वेदांत सूत्र के दुश्मन है, वेदांत सूत्र को मानते नहीं। वो ये भी कहते हैं कि जब मेरे पास हमारे पास कर्म मीमांसा है, धर्म था तो धर्म जिज्ञासा है, धर्म है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप थ्योरी क्यों बोलते हैं अभी, है कि नहीं, तो क्या जरूरत है। तो मायावादी क्या करते हैं, वो भी खंडन करते हैं कर्म मीमांसा को, हम भी खंडन करते हैं, इससे दुश्मन दुश्मन मित्र होता है ना, उस प्रकार का मित्रता है मायावादी से। लेकिन वो मित्रता जो है हमारे लिए बहुत डेंजरस है, कि नहीं, जो दुश्मनी के आधार पर मित्रता बनाता है ना, वो मित्र दुश्मन से भी डेंजर होता है। यज्ञवाल्क्य कर धर्मशास्त्र में बात कहते हैं, देखो मित्रता जो है दुश्मनी के आधार पे मत करना, धर्मशास्त्र ठीक है। जो ये वेदांत है कहां धर्मशास्त्र आगे बीच में बात सिस्टम है। हम दोनों दोस्त है, क्यों मालूम है, हम दोनों का कॉमन मित्र है, कॉमन दुश्मन है। यानी आप दोनों की मित्रता का आधार क्या हुआ, दुश्मनी। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मायावादी इस प्रकार है, वो दोनों के लिए कर्म मीमांसा दुश्मन है, लेकिन उसके आधार पे उसको मित्र मत मानो, क्योंकि ये घर का दुश्मन है। क्योंकि दोनों एक ही वेद, वो भी वेदांती है, हम भी वेदांतिस्ट है, लेकिन दोनों के बीच में इसलिए और डेंजरस है मायावादी। कम से कम कर्म मीमांसा से उनको मालूम है ये दुश्मन है, इसको इस प्रकार रिफ्यूट किया जा सकता है। तो ये मायावाद जो है ऐसा अंदर घुस जाता है तो उसको रिफ्यूट करना, पहचाना ही मुश्किल होता है, उसको जाना ही मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट। हाँ हाँ
इंद्र तुपरी से बहुत फ्रस्ट्रेट होके अभी तो आप ब्रह्म जिज्ञासा करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो वैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा, वो अथा तो किसके लिए?
अच्छा प्रश्न है, क्योंकि उनका कहना है अथा तो धर्म जिज्ञासा। अभी आप कौन सा धर्म है, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्धारण करने वाला कौन है? कोई ना कोई होना चाहिए। अभी आप ने सांख्य दर्शन के अनुसार न्याय वैशेषिका सांख्य योगा, आपने ये चार सिद्धांतों में बहुत बड़े बड़े बातें लिखा, लेकिन कौन सर्टिफाई करेगा ये सही है क्या गलत है? वेद सर्टिफाई करता है, और वेदों को आपको यथारूप स्वीकार करना होगा। इसकी वजह से अथा आपके पास कोई निर्धारण नहीं है, देयर इज नो कंक्लूसिव, देयर इज नोबडी टू सर्टिफाई ये सही है ये गलत है, इसको करना है इसको नहीं करना है। इसके वजह से धर्म का जिज्ञासा करो वेदों से, ये बात है। वो एड्रेस किया गया उनको पतंजलि इत्यादि अन्य सिद्धांतों को, ठीक है। और कोई
गुरु, जैसे आपने बताया कि गुरु के प्रति आसक्ति, तो कभी भावुकता भी हो सकता है, तो कैसे समझे कि वो भावुकता नहीं है प्रामाणिकता है?
भावुकता ही प्रेम, मतलब भावना तो रहती है, लेकिन भावुकता तो जरूरी है, भावुकता भी कैसे आसक्ति होगा? आसक्ति जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आसक्ति थोड़ी ना होता है। आप घर में कोई रूल रेगुलेशन बना सकते हो? नहीं बना सकते। गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होता है, घर में क्या रूल रेगुलेशन है, तो वो नहीं होता। वो आसक्ति तो भावुकता के ऊपर आधारित रहता है, लेकिन भावुकता की शुद्धता वो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति जो है गुरु के पीछे पीछे भाग रहे हैं, गुरु ही सबको मानते हैं पीछे, लेकिन एक दिन गुरु ने डांट दिया, नाराज हो गए, बोलते मैं आपसे दिखूंगा नहीं, बिन बोलूंगा नहीं, गुरु जी से मिलूंगा नहीं। इसका मतलब क्या है? उनकी आसक्ति जो है गुरु से नहीं था, और गुरु का जो हाव भाव है इसका, उनका जो प्रसिद्धि है कीर्ति है उसके प्रति था। तो मैं भी गुरु की सगा तुम्हारे साथ में रहूंगा तो मुझे भी वो मिलेगा, उसका आसक्ति उसके प्रति था। आसक्ति का परीक्षा कब होगा? जब आपको आप जिससे आसक्त हो उसका डांट सुनने के बाद भी आपको दुख नहीं लगता, बल्कि आनंद का अनुभव होता है। डांट सुनने के बाद भी आनंद का अनुभव होता है। अद्वैताचार्य महापुरुष से डांट खाने के लिए क्या क्या किया, मायावाद को वर्णन किया कि नहीं? डांट मिला तो बड़ा, बस बस यही चाहता था मैं। इसका साक्षी सीता ठाकुरानी, आज उनका आविर्भाव दिवस है, तो स्मरण करना चाहिए। तो गुरु का डांट सुन के खुश हो जाना, नाराज नहीं होना, वो आसक्ति का एक एक प्रदर्शन है, एक परीक्षा है, आसक्ति की परीक्षा है। इसलिए गुरु जी आपको डांटते हैं उसको सुन के बड़ा आनंद का अनुभव करना चाहिए। देखो गुरु जी ने मेरा विश्वास किया, डांटने पर भी मैं नहीं जाऊंगा करके उनको विश्वास है, जब गुरु आपको प्रशंसा करते हैं आपको दुखी हो जाना चाहिए, अरे रे देखो गुरु के मेरे ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। ये भावुकता ही आसक्ति मतलब भावुकता है, लेकिन उसके पीछे शुद्धता ये जरूरी है। प्राय हम देखते हैं कि आसक्ति जो है वो कि आसक्ति की शुद्धता जो है वो बहुत कमी दिखाई पड़ता है। श्री प्रभुपाद जी अपने जो कट्टम शिष्य थे कितने डांटते थे लेकिन फिर भी वो उनके साथ में थे।
जस्ट इन प्रिंसिपल वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस गुरु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट विच गुरु एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट दिस आसक्ति फॉर टू डिफरेंट दीक्षा गुरु। कैन यू थ्रो सम लाइट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल।
देखिए पति पत्नी का संबंध हो जाता है ना गुरु गुही रहता है, जैसे सीक्रेट पत्नी जो है घर की हर बात बताएगी, घर में ये हुआ वो हुआ बच्चे ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे सब बताएगी। लेकिन हम पति के हमारा संबंध वो पति पत्नी के बीच में संबंध वो उसके वो खुद किसी को कहती नहीं है, लेकिन इसी प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध जो है व्यक्तिगत होता है पर्सनल होता है, वो किसी को कहने वाली बात चीज नहीं होती है। तो ये अंदरूनी बात होती है, वो ऑफिशियली कोई दीक्षा गुरु कोई शिक्षा गुरु, क्योंकि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, संस्था होने के नाते कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है दीक्षा गुरु के रूप में। अभी किसी ने शिक्षा गुरु के रूप में किसी को नियुक्त नहीं किया है, कोई मान लिया जाता है। लेकिन ये तो बाह्य संस्था चलाने के लिए, ये जो संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध ये किसी व्यक्ति कोई एक वरिष्ठ भक्त के साथ हो सकता है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नहीं कि फलाना व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ वंस इंटरनल रिलेशनशिप है कि नहीं। तो इससे समस्या आती, प्रभुपाद ने कहा ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेसेसरी रीविल कहा गया। पहले धर्म का प्रचार जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, वो अपने आप चलता था। लेकिन कलयुग के प्रभाव की वजह से हमको एक संस्था की आवश्यकता होती है, तो संस्था के जो नियम हैं उसको पालन करो और साथ साथ में ये जो गुरु शिष्य का जो संबंध है उसको अच्छी तरीके से गाढ़ रूप में जिसको आपके प्रति जिसके प्रति आपका विश्वास है उसको अच्छी तरह से संभाल के रखो। बात हुआ है इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल थिंग। मैं एक जगह गया था सत्संग करने के लिए बुलाए थे, करने के बाद मैंने ऐसे ही पूछा कौन कितना माला कर रहा है, उसने कहा 16 माला करते हैं। मैंने पूछा अच्छा है, तो उनकी पति ने कहा रोजी मेरी पत्नी का दीक्षा भी हो चुका है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। मैंने कहा आप नाम क्या, नाम बताइए। मैंने पूछा आप किसके शिष्य है। पता नहीं रोजी दीक्षा हो गया था मुझे बहुत साल पहले, वृंदावन गई थी किसी ने भक्ति बिठा दिया था मुझे। सही बात है, मैं क्या करूंगा। अब उनको कैसे डिफाइन करोगे बोलो, उसको नाम भी नहीं मालूम उनको। तो ये गुरु शिष्य का संबंध वैदिक ग्रंथों में जिस प्रकार हुआ है या वैदिक सभ्यता में है वो कहीं प्राप्त नहीं होता है। खास करके पाश्चात्य सभ्यता जो है अंग्रेजी सभ्यता क्रिश्चियनिटी जो है उसका प्रचार कैसे हुआ, कोई एक राजा जाके सैनिकों को बेचे, एक राज्य को उन्होंने हड़प लिया और पीछे पीछे वो आएंगे कौन बिशप है जो भी आएंगे राज्य में सब लोगों को बुलाएंगे, आज से आप सब क्रिश्चियन पानी डाल देंगे। बस उन लोगों को मालूम नहीं, इसका नाम भी नहीं मालूम, ऐसा प्रचार हुआ। लेकिन वो बीमारी जो है हमारी संस्था में आ रहा है, आज से आप सब लोग हो गया। लेकिन तो इट हैज बिकम लाइक दैट। लेकिन वो होने पर भी संस्था होने के नाते होना चाहिए, होने पर भी ये व्यक्तिगत जो संबंध है गुरु के प्रति वो एक अलग ही वस्तु होता है, अलग ही चीज होता है, उसको कभी ये नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।